ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तम श्लोके भक्तिर भवति निष्ठकी। तो हम पहले दूसरा और तीसरा श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर चौथा श्लोक दोहराएंगे। यमस्य देवस्य न दंड भंग कुतस्य न, दोहराएंगे क्या, चौथा श्लोक दोहराएंगे हम लोग। यमस्य देवस्य न दंड भंग कुतस्य नरसे भूत श्रुत पूर्वासीत एतन मुने व्रश्यति लोक संशयम् नहि तदन्यति मे विनिश्चितम्। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जो महाराज परीक्षित बोल रहे हैं, पहला श्लोक महाराज परीक्षित में प्रश्न कर रहे हैं तो उसी में प्रसंग में है। दूसरे श्लोक में हे महर्षि, इसके पूर्व यह कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा कि यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ हो, इसलिए मैं सोचता हूँ कि लोगों को इस पर संदेह होगा, जिसका उन्मूलन अन्य कोई नहीं अपितु तो आप ही कर सकते हैं। चूँकि ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है, इसलिए कृपया करके इन घटनाओं के कारणों की व्याख्या करें। और तीसरा श्लोक श्री सुखदेव गोस्वामी बोले हैं। श्री शुक उवाच, भगवत पुरुषे राजन याम्या प्रति अतोद्यमः प्रतिम विज्ञापयामाशु यमं संयम निपतिम। अनुवाद इस प्रकार से है, श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब यमराज के दूत विष्णु दूतों द्वारा चकरा दिए गए और पराजित कर दिए गए तो वे अपने स्वामी संयमनीपुरी के नियंत्रक तथा पापी पुरुषों के स्वामी यमराज के पास इस घटना को बताने पहुँचे। और आज का श्लोक चौथा श्लोक है जिसमें तात्पर्य दिया, तो इसको हम दोहराएंगे। यम दूताचुः कति सन्ति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्मा फलाविभक्ति हेतव। शब्दार्थ, यम दूताचुः, यमराज के दूतों ने कहा, कति कितने, संति है इह इस जगत में, शास्तारः नियंत्रक या शासक, जीवलोकस्य इस भौतिक जगत के, वै निसंदेह प्रभो हे स्वामी, त्रैविध्यम प्रकृति के तीन गुणों के अधीन, कुर्वतः करते हुए, कर्म कर्म फल फलों की, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति के, हे तबह कारण, अनुवाद तात्रिश्लाप्रवाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद दोहरा सकते हैं। यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, इस भौतिक जगत में कितने नियंत्रक या शासक हैं? प्रकृति के तीन गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के अधीन संपन्न कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी हैं? तात्पर्य इस प्रकार से है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वे यमदूत इतने निराश थे कि इन्होंने प्राय क्रुद्ध होकर अपने स्वामी से पूछा कि क्या उनकी अतिरिक्त तो और कोई भी स्वामी है। यही नहीं, चूंकि यमदूत पराजित किए जा चुके थे और उनका स्वामी उनकी रक्षा नहीं कर सका था, अतः वे यह कहना चाह रहे थे कि उन्हें ऐसे स्वामी की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सेवक बिना पराजित हुए अपने स्वामी के आदेशों को पूरा नहीं कर सकता तो ऐसे शक्तिहीन स्वामी की सेवा करने से क्या लाभ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपा कदा मह्यं ददाति सपदांतिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग अभी ब्रज, आप सब ब्रजवासी हैं, हम तो बाहर से आए हैं और हमारा तो ब्रज में जो है आप जैसे भक्तों के बीच में बैठने के लायक भी योग्यता नहीं है, लेकिन भक्तों ने व्यास आसन में बैठा दिया है। ऐसा योग्यता है नहीं, लेकिन प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी ने जो बताए हैं उसको आपके आशीर्वाद से चर्चा करने का। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। ये जो प्रसंग जो चल रहा है, अजामिल का प्रसंग चल रहा है, बहुत ही सुंदर है, जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन हुआ है, नाम की महिमा का। विशेष रूप से नाम, ये जो जो भाग है भागवत का, ये पोषण का हिस्सा है। भागवत में 10 भाग में है जिसमें पोषण, भक्तों का पोषण करने के लिए जो है ये प्रसंग विशेष रूप से महत्व रखता है कि हरिनाम में जैसे ये हमारे लिए बहुत भी महत्वपूर्ण है कि हम भक्ति में आ गए हैं, लेकिन हम जो है हरिनाम जप को उतना महत्व नहीं दे पाते हैं, अपराध भी करते हैं कई बार, बहुत बार सुनते हैं उसके बाद भी। तो इसमें हरिनाम की महिमा इतना स्पष्ट रूप से और इतना जो है विस्तृत रूप से जो है किया गया है हरिनाम की महिमा का गुणगान, कि उससे हमारा भगवान के नाम में विश्वास बढ़ेगा स्वाभाविक रूप से। और इस नाम में विश्वास से जब हम विश्वासपूर्वक नाम जप करेंगे तो हमको उसके फल की प्राप्ति होगी, विश्वास फलदायक है। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रूपा जी कहते हैं, रूपा जी ने बताया कि मेरे को जो पूरे विश्वभर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया रूपा जी ने, उसके लिए सफलता का जो कारण रूपा जी बताए कि मेरी सफलता का राज है कि मुझे हरिनाम में पूर्ण विश्वास था और मेरे गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा थी। ये दो कारण उन्होंने बताए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु के आदेश हमारे पास भी हैं और हरिनाम हमारे पास भी है। अब कमी है तो विश्वास की कमी है। तो विश्वास सुनने से आता है। भागवत में जो है इस प्रसंग को, ये जो प्रसंग है ये भगवान के नाम में हमारा विश्वास दृढ़ करता है। इसमें स्वयं भगवान के दूत विष्णु दूत हैं, वो भगवान के जो है नाम की महिमा का बखान करते हैं। फिर अब यमराज जी आगे जाके यमराज जी नाम का गुणगान करेंगे, नाम की महिमा यमराज जी खुद बताएंगे। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि आप सुन ही रहे हैं, लेकिन हम वापस से दोहरा देते हैं कि जब अजामिल जो बहुत शुरुआत में भक्त था, कुछ समय भक्ति किया लेकिन बाद में भक्ति पद से च्युत हो गया और पथ भ्रष्ट होके उसने वैश्या से विवाह कर लिया और सारे पाप कर्म करने लगा। लेकिन चूंकि उसने शुरू में भगवान की भक्ति की थी तो उसका परिणाम उसको उनको ये हुआ कि बहुत जो है वृद्ध अवस्था में उसके पुत्र हुआ और उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। इतना पापी था, रूपा जी लिखते हैं कि वृद्धावस्था में उसका पुत्र था। तो वहाँ पे लेकिन सौभाग्य से चूंकि उसने शुरू में भक्ति किया था तो उसके कारण भगवान की कृपा से अनायास ही उसने उसका नाम नारायण रख लिया बच्चे का। और वो बच्चे को पुकारता था, इसी से उसके पापों पाप सारे कट गए। और जब उसका अंत समय आया तो यमदूत उसको लेने के लिए आए। ये यमदूतों से भूल हुई कि वो उसको लेने के लिए आए, और यमदूत सोच रहे थे कि ये पापी व्यक्ति है और इस पे तो हमारा पूरा अधिकार है। तो यमदूतों ने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ा तो वो जो है वापस अपने, क्योंकि बेटे में आसक्ति थी तो उसी को पुकारा कि नारायण मुझे बचाओ। उनको भैसे जो है, और जैसे ही नारायण मुझे बचाओ, नारायण को पुकारा बचाव के लिए, तो भगवान के दूत आगे कोई हमारा प्रभु को जो है पुकार रहा है, तो प्रोटेक्शन के लिए विष्णु दूत आ गए और विष्णु दूतों ने आके उसको रोक दिया। ये जो घटना है, ऐसा लगता है कि सब काल्पनिक कहानी लगती है, ऐसा लगता है लेकिन काल्पनिक नहीं है। हमारे जोधपुर मंदिर में कुछ समय पहले बद्रीनारायण महाराज पधारे थे तो वो बता रहे थे कि एक बेंगलोर के मूल निवासी जो अमेरिका में रहते हैं सैन डियागो मंदिर में, प्रकाश जी, मिस्टर प्रकाश करके, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और कोई 5-7 साल पहले है, जब बद्रीनारायण महाराज संन्यास तो अभी लिए, पहले टेंपल प्रेसिडेंट थे सैन डियागो मंदिर के। और वहाँ पे महाराज बता रहे थे कि वो जो ये व्यक्ति था ये बड़ा कंजूस व्यक्ति था, हालांकि बिजनेसमैन था लेकिन डोनेशन कभी नहीं देता था बोले, और बोले क्रिटिसाइज बहुत करता था भक्तों को। तो उनकी पत्नी भक्त थी इसलिए वो भक्त समाज से जुड़े हुए थे, पत्नी जो है जयपता महाराज की शिष्या है, तो ऐसे करके उनका भक्तों से जुड़ाव था और अभी भी वो भक्त हैं वहाँ पे, कोई जाए तो मिल भी सकता उनसे। उनको कुछ दुर्घटनावश उनका वो कोमा में चले गए, ये मिस्टर प्रकाश कोमा में चले गए, और कोमा के दौरान उनके साथ ऐसा हुआ कि 3 बार उनको जो है हार्ट बंद हो गया, जो लाइन फ्लैट हो गई, जो दिखाता रहता है ना कोमा में व्यक्ति पड़ा रहता है तो धड़कन चलती रहती है, तो 3 बार ऐसा हुआ उनके साथ कि धड़कन बंद हो गई और वापस चालू हुई। ऐसे अलग अलग समय पे हुआ, और तीसरी बार जब हुआ उसके बाद वो होश में आ गए। तो होश में आने के बाद वो किसी से बात भी नहीं किए, और वो बोले कि मुझे प्रभु जी से मिलना है, हैं बद्रीनारायण प्रभु से। उनकी पत्नी ने बद्रीनारायण प्रभु से रिक्वेस्ट की कि आप आइए, आपसे मिलना चाहते हैं, इतने कोमा से निकले हैं बाहर। तो बद्रीनारायण महाराज बता रहे थे वो गए थे, तो जैसे ही गए तो वो देख के बोले वो आए थे, ऐसे अंग्रेजी में बोला था उन्होंने कि वो आए थे, हैं कि कौन आए थे, कि वो आए थे, ऐसे बोल नहीं पा रहे थे कि वो बहुत सुंदर थे क्या, चार हाथ वाले थे। उन्होंने पूछा कि नहीं नहीं बहुत डरावने थे। पूरा उन्होंने वर्णन किया कि तो फिर तुमने क्या किया। वो बोले मैंने कहा कि मैं, मेरी पत्नी भक्त है, मैं मंदिर जाता हूं, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। तो इसलिए वो मुझे छोड़ गए। तीन बार आए वो, जब भी नहीं करते थे वो व्यक्ति। तो उसके बाद से अभी वो भक्ति में, महाराज बता रहे थे मुझे पता नहीं वो कितना माला कितना कर रहा है, लेकिन उसके बाद उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। बोलते हैं वो व्यक्ति अभी है, बोले अब पहले तो आके खोट निकालते थे सब भक्तों में, दोष देखते थे, अभी वो सबसे बाद में आते हैं। जब अंदर भक्त चले जाते हैं तो वो चप्पलों को अरेंज करते रहते हैं बाहर, इतने विनम्र हो गए हैं कि भक्तों की चरण धूल लेते हैं, भक्तों इतना सम्मान करते, साफ सफाई करते, शांति से, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, अभी कोई क्रिटिसिज्म नहीं करते। तो उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कोई काल्पनिक बात है, ऐसा नहीं कि हिंदू के साथ ही होता है, ये भी नहीं है। ऐसी भी कुछ घटनाएं महाराज ने बताई थी जो दूसरे धर्म के लोगों के साथ होता है। और ये स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट वहां भी दिया हुआ है, क्योंकि धर्म तो एक ही है, उनके हिसाब से उनको भगवान ने व्यवस्था दे रखी है ना, लेकिन धर्म एक ही है, अलग नहीं है, भगवान एक ही है, लेकिन लोग उनको अलग अलग तरह समझते हैं। दूसरे धर्म के लोग सोचते हैं कि हम, वो सोचते हैं कि अल्लाह है, वो कृष्ण को अल्लाह समझते हैं, ऐसा है ना, लेकिन उनके हिसाब से दिया हुआ है। बट ये सबके साथ है ये व्यवस्था पूरी, जो जैसे भारत में जो सरकार का अभी मोदी जी का राज चल रहा है तो वो पूरे भारत में है। अब भारत के कोई भी हिस्से में आप जाओ कि नहीं और कहो कि नहीं यहाँ उनका राज नहीं है, तो ये गलत बात है ना। ऐसे पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड के शासक और पूरे ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक तो कृष्ण ही हैं, और उनका ही शासन चलता है, उनकी व्यवस्था चलती है। खैर ये यमदूतों को पता नहीं था, यमदूत सोच रहे थे कि जो है हमारे जो मालिक हैं वही सारे यूनिवर्स के मालिक हैं, यमराज जी जो हैं वो सबके मालिक हैं, वैसा सोचते थे, क्योंकि उनका हुक्म चलता था, वो सबको निर्णय देते थे, वो यही देखे थे शुरू से कि सबका निर्णय तो करते हैं, यहाँ तक देवताओं का निर्णय करते हैं यमराज जी, हैं धर्म के संबंध में, मनुष्य हो देवता हो इस संसार में सबका डिसीजन वो लेते हैं। तो ये देख के उनको पूरा कॉन्फिडेंस था, हैं और पता नहीं यमराज जी ने क्यों नहीं उनको भगवान के नाम की महिमा नहीं बताई, शायद अश्रद्धालु थे इसलिए अपराध, नौवे नंबर का अपराध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नाम में श्रद्धा नहीं थी, यही कारण रहा होगा। एग्जैक्टली क्या रहा होगा पता नहीं, क्योंकि नाम की महिमा यमदूतों ने भगवान विष्णु के दूतों से सुनी, उसके बाद भी वो क्रुद्ध हैं, मतलब उनका भगवान नाम में बिल्कुल विश्वास नहीं था, है? और वो ये भी समझ गए थे कि नारायण के दूत हैं, उन्होंने उसमें संबोधन में पहले आया है ना, लेकिन ठीक ठीक कन्फ्यूजन ही था, उनको क्लियर नहीं था, लेकिन ये तो समझे कि ये सभ्य लोग हैं, इतना तो उन्होंने माना था। यमदूत बोले थे उनको कि आप अच्छे भले लोग हो, विष्णु दूत बोले थे कि आप अच्छे आदमी लग रहे हो, सुंदर हो सब तरह से, आप पापी तो नहीं हो, आप पुण्यात्मा हो, आपका तेज दिखा रहा है ये, फिर भी आप क्यों रोक रहे हो हमको, बोला था ना। तो उसमें जो यमदूत थे वो ये मान रहे थे कि ये अच्छे लोग हैं, उन्होंने भगवान के नाम की महिमा बखान के लिए उनको विश्वास बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो शायद यही कारण रहा होगा कि यमराज जी पहले नहीं बताए होंगे, जो भी कारण रहा हो उनको यमराज जी ने नाम की महिमा नहीं बताई थी, और भगवान के बारे में ज्यादा नहीं बताया था, क्योंकि उनकी स्थिति जो उनका काम है वो बताया गया होगा कि भाई ज्यादातर जैसे होता है ना कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उसमें भी अलग अलग पद के लोग होते हैं, और उनको सरकार की सारी जानकारी सबको नहीं होती, उनको अपने जो उनका काम करना है उतना जानकारी होता है जिसका, और कोई रिमांड सेक्शन वाले होते हैं वो रिमांड देना ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते, और रिमांड सेक्शन में जाएगा वो जो आएगा उसको जुड़ेंगे उनको और कुछ जानकारी नहीं होती। तो ये यमदूत हैं, उनका कौन सा जॉब था, जिस तरह का जॉब था उस तरह से उनको जानकारी दी गई होगी, पूरा व्यवस्था का उनको जानकारी नहीं था। भगवान नारायण है ये उनको जानकारी थी, बोले भी थे वो, लेकिन उनको क्लियरिटी कुछ नहीं था। वो तो यही सोचते थे कि जो भी है हमारे तो यही हैं, है ना, ऐसा सभी सोचते हैं। लेकिन उनको बहुत निराशा हाथ लगी थी, उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत कॉन्फिडेंस से जाते थे और वो तो अपने को मालिक समझते थे, मतलब हमारे मालिक सबके मालिक है तो हम भी वही है, है ना, जो मालिक है वही सेवक, सेवक मालिक का प्रतिनिधि होता है ना। तो वो यमराज की तरह ही जाते थे, वो यमदूत आते तो यमराज का साक्षात प्रतिनिधि होते हैं, तो वही काम करते हैं जो यमराज जी करते हैं, यमराज जी के कहने पे कर रहे हैं तो वो तो यमराज जी वाला ही काम कर रहे हैं ना। उन्होंने पूरा ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था, उनके लिए बड़ा शॉकिंग था ये, मतलब एकदम बहुत बड़ा झटका लगा था उनको। और खास बात ये कुछ कर नहीं पाए, है ना, वो अपने को बहुत बलवान भी समझते थे और अपने मालिक को बहुत बलवान समझते थे, उन सोचते थे कि हमारे मालिक की शक्ति हमारे साथ है। और ऐसा था भी, वो जिसको पकड़ते थे उनके हाथ से कोई छूट नहीं सकता था, यमदूतों के हाथ से कोई बच नहीं सकता, बड़े से बड़े शक्तिशाली लोग हुए कोई उनसे बच नहीं सकता, वो एम्पावर्ड होते हैं, है? यमराज जी और उनका कनेक्शन होता है, आजकल हम ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो फोन कर देते हैं मलिक को, फट से अपने जो होगा अथॉरिटी होगा उसको तुरंत फोन के लगा देंगे कि ये काम नहीं हो रहा है तो उनके पास भी व्यवस्था तो होगी, और उनके पास तो ऐसी व्यवस्था है, यमराज जी का आगे वर्णन आएगा कि यमराज जी भगवान उनको मदद करते हैं और वो त्रिकालज्ञ की तरह हैं कि वो परमात्मा की तरह वो सब कुछ देख सकते हैं, यमराज जी का ऐसा है। तो यमराज जी फिर भी उनको मदद नहीं किए, है वो ये सोच रहे थे कि यमराज जी उनको मदद नहीं किए, या यमराज जी अगर मदद नहीं कर सके तो मतलब ये कम जो है कमजोर हैं, है हमको मदद नहीं कर पाए, तो बड़ा उनको बड़ा टेंशन हुआ था। ऐसा उन्होंने सोचा था, उनके सारे सिद्धांत हिल गए थे, बहुत डिस्टर्ब हो गए थे वो, कि पहले तो खुद पराजित हुए, फिर यमराज जी उनको मदद नहीं कर पाए, तो यमराज जी मतलब इतने कमजोर व्यक्ति है कि वो चार लोग आए और उनके सामने कुछ नहीं कर पाए हम लोग, है तो बहुत फ्रस्ट्रेट थे, बहुत निराश होके और गुस्से में आए। लेकिन एक खास बात देखिए कि यमदूत हैं, उनका काम भी बड़ा खतरनाक है, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु के दूतों को प्रति अपराध नहीं किया, है आपने देखा इस प्रसंग में, गुस्सा हुए लेकिन वैष्णव अपराध नहीं किया। अपने जो अथॉरिटी उनको आगे बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं मन में जो है, इससे सीख लेना चाहिए भक्तों को, ऐसी शिक्षा है, बड़ा सुंदर शिक्षा है कि अथॉरिटी को बोल लो जो बोलना है, आपके मन की बात है वो, लेकिन सबके ऊपर आप अपराध मत करो। उनके साथ बहुत अन्याय हुआ था और उन्होंने अनएक्सपेक्टेड था, और ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में जनरली हमने देखा कि भक्त अपराध कर बैठते हैं। ऐसी जब परिस्थिति होती है कि जहां आपके अधिकार क्षेत्र में आप सेवा कर रहे हैं और उसमें कोई आपके अधिकार से आपको रोकता है, तो वहां भक्त अपने को बिल्कुल नहीं रोक पाते हैं और भक्त तुरंत अपना पावर इस्तेमाल करते हैं, जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है। बट ये आचरण बहुत श्रेष्ठ आचरण था कि उन्होंने उनका पावर तो अप्लाई कर रहे थे लेकिन उन्होंने अपराध नहीं किया, गाली दे सकते थे ना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी तरह से उन्होंने कोई अपराध नहीं किया विष्णु दूतों के प्रति। और ये भी विष्णु दूतों के प्रति यहां भी गाली नहीं दे रहे हैं, यमराज जी को बोल रहे हैं कि आप हमको भेजे, उनसे मतलब है ना, विष्णु दूतों ने हमको रोका ये अलग बात है, लेकिन उनके प्रति उनका कोई ना वैमनस्य है मन में, ना उनके प्रति कोई क्रिटिसिज्म है, कि वो बोल रहे हैं कि क्या वो ऐसे कैसे हुआ। तो हम भक्तों को इस बात को शिक्षा लेने का है यहाँ पे बहुत अच्छा, कि भक्त जो है वो उनको हमेशा दूसरी कोई भी स्थिति बने अपने अथॉरिटी से कंसल्ट करें, और जो भी स्थिति है उसमें बायस्ड नहीं हो जाएं पहले से ही। हम लोग खुद ही बायस्ड हो जाते हैं पहले ही, हम अथॉरिटी बन जाते हैं, हम निर्णय भी ले लेते हैं और हम काम भी कर देते हैं, उसके बाद अथॉरिटी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है ये तो अनुचित कार्य है, ये कार्रवाई जो है पूरा गलत हो जाती है। तो यमदूत जो थे यमराज जी के सेवक बने, तो वो भी क्वालिफाइड हैं, हमसे तो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं ही, यमराज जी की सेवा कर रहे हैं। यमराज जी 12 महाजनों में से एक महाजन हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन उनको उन्होंने बहुत अच्छा एटिकेट के यहाँ प्रदर्शन किया उसके बाद, लेकिन असंतुष्ट थे और उन्होंने जाते ही क्या बोला, निराश थे, हताश थे, वो सोच रहे थे रिजाइन करने के मूड में गए थे। बोले अब मैं सेवा, हम सेवा नहीं कर सकते। बोले ऐसे थोड़ी सेवा होती है भाई, यही भाव यही है उनका। और प्रभुपाद जी ने इसी भाव में तात्पर्य दिया। प्रभुपाद जी श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर महाराज का कोट करके बोल रहे हैं कि यमदूत इतने निराश थे कि उन्होंने प्राय क्रोध होकर अपने स्वामी से पूछा कि क्या उनके अतिरिक्त और कोई भी स्वामी है, और कई स्वामी हैं, ऐसे बोलते हैं। अच्छा होता है ना, जैसे मान लो कहीं कोई अथॉरिटी का पालन कर रहा है और उनके साथ कुछ हो जाता है तो मंदिर में जनरली देखा जाता है, टेंपल प्रेसिडेंट को जाकर शिकायत करेगा तो जो गुस्से में होगा क्या बोलेगा कि कितने टेंपल प्रेसिडेंट है इस मंदिर में, कितने टेंपल प्रेसिडेंट है, बोले ऐसा बोलता है ना, सीधा ये स्टेटमेंट बोला है ना कि कितने स्वामी हैं, कितने कंट्रोलर हैं। हम तो सोचते थे आप ही कंट्रोलर हैं, और वो मान रहे हैं अभी भी वो मान रहे हैं कि आप ही कंट्रोलर हैं। इसीलिए एक जो है एक व्यंगात्मक लहजे में वो ये बोल रहे हैं कि कितने हैं, बोले कति संति है शास्तारो, है कि प्रभु जी कितने हैं, कौन कौन नियंत्रण करने वाले, मतलब आपका नियंत्रण नहीं चल रहा है। तो एक व्यंग था, है जो है सीधा पहला स्टेटमेंट ये बोला, मतलब खूब भरे हुए हैं, है ये जो पहला कोई बात। अब वो यमराज जी के सामने गए हैं, यमराज जी इतने बड़े अथॉरिटी हैं और उनके सामने जाते ही वो इस तरह से बात कर रहे हैं, तो मतलब उनका मनोदशा आप समझ सकते हैं। ओ बहुत निराश है, बहुत उद्विग्न है, और मानते हैं कि हाँ आप ही अथॉरिटी, ये तो मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सीधा ये बोला कि और कितने और हैं, है? क्योंकि आपका शासन तो चल नहीं रहा है, हमको रोक दिया गया है? अभी आगे जो है एक एक स्टेटमेंट वो बोलेंगे, बड़ा जो है उनका जो भाव है वो इसी तरह का है। फिर अब उन्होंने बाद में बोलता है कि यही नहीं, प्रभुपाद जी लिख रहे तात्पर्य में कि यही नहीं, चूंकि यमदूत पराजित किए जा चुके थे और उनका स्वामी उनकी रक्षा नहीं कर सका था, है ना, अतः वे यह कहना चाह रहे थे कि उन्हें ऐसे स्वामी की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले ऐसा होता है कई बार कि अथॉरिटी के अंदर में है और उसका चलता नहीं है, तो फिर वो बोलते हैं हम आपके नीचे काम नहीं करेंगे, आपका कोई सुनता नहीं है, आपकी कोई मानता है नहीं, आपके नीचे काम करने से क्या फायदा। इस प्रसंग में हमको निराशा होती है क्योंकि हम ऐसे ही मालिक चुनते हैं। अगर एक कथा प्रभुपाद जी सुनाते थे कि एक गांव का एक व्यक्ति था, उसने निर्णय किया कि मैं सबसे बड़े आदमी की सेवा करूंगा, है तो सबसे बड़े आदमी की सेवा करना चाहता था, तो उसने गांव में देखा कि सबसे बड़े आदमी सरपंच साहब हैं, है वो सरपंच कहीं चलता था हुक्म, वहाँ पे जहाँ देखता सरपंच के सामने सब लोग झुकते थे, सब उसकी बात मानते थे और वो ऑर्डर पास करता था, उस पर अमल होता था। तो वो गया सरपंच साहब के पास कि आप सबसे बड़े हैं क्या, तो वो बोले कि हाँ मैं ही हूँ यहाँ तो सबसे बड़ा, कि तो फिर बोले मैं सेवा करना चाहता हूँ, आपकी नौकरी करना चाहता हूँ, कि नौकर की मुझे आवश्यकता नहीं है, कि नहीं नहीं मैं आपसे कुछ लूँगा नहीं, फ्री में आजीवन आपकी सेवा करूँगा। ऐसे व्यक्ति कौन त्यागेगा, उन्होंने ठीक है करना चाहते तो मुझे क्या तकलीफ है, तो सेवा करने लगा और सेवा भाव बहुत अच्छा था उनका, हृदय से सेवा करना चाहता था, हृदय से सेवा कर रहा था और सेवा करता रहा। एक दिन क्या हुआ कि वो प्रधान ने मीटिंग बुला लिया, तो चूंकि ये बहुत विश्वस्त सेवक था तो सेक्रेटरी के तौर पर, सचिव के तौर पर सरपंच साहब इनको ले गए। अब ले गए तो वहां देखा कि प्रधान साहब के सामने सरपंच साहब तो कितनी बार झुक रहे हैं और सर 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 बोल के आगे पीछे हो रहे एकदम। तो ये देख के जो है उन्होंने बड़े परेशान हो गया कि ये तो बोले थे कि सबसे बड़े यही हैं, अब फिर बोलने के। तो उन्होंने जब थोड़ा समय मिला तो एकांत में पूछा कि सरपंच साहब ये प्रधान साहब आपसे बड़े हैं क्या, कि अरे बहुत बड़े हैं, हमसे तो बड़े हैं ही, उसमें क्या संशय है, कि तब मेरी सिफारिश कर दो ना, मैं उनकी यहाँ सेवा करना चाहता हूँ, मैं अभी उनके पर सेवा करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है मैं कर दूंगा भाई, फ्री में मिल गया, जा रहा है तो लॉस भी क्या है उनका, सरपंच साहब की ने कुछ नहीं किया, ठीक है तुम करना चाहते हो तो। उनको बोला कि ये जो सेवक है बहुत अच्छा सेवक है, बिल्कुल पक्का सेवा करेगा, बिल्कुल जो है निस्वार्थ सेवक है ये, है आपसे कुछ नहीं लेगा और ईमानदारी सेवा करेगा, आप इसको सेवा में ले लीजिए, चाहता है। तो उनसे पूछा कि सर आप सबसे बड़े हैं, कि हाँ ये एरिया में मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तो फिर बोल के उनकी सेवा करने लग गया। अब एक दिन जो है वहाँ के एमपी ने सारे प्रधानों को बुलाया, जो है तो प्रधान सारे जो है मीटिंग में गए, तो ये भी उनकी पर्सनल सेवा में था तो ये भी गया। तो ऐसे ही वहाँ देखा तो फिर रिक्वेस्ट किया कि भाई आप तो बोलते थे आप सबसे बड़े हैं, कि नहीं नहीं मैं उस क्षेत्र का अधिकारी हूँ, पूरे जिले के अधिकारी तो ये हैं, पूरा जिला इनके पास है, वो मेरे पास पूरा नहीं है। कि अच्छा तो आप मेरी रिक्वेस्ट कर दो थोड़ा सा, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा कर लो। ऐसे करते करते वो एमपी से, फिर एमपी के एक बार जो है प्राइम मिनिस्टर ने सारे एमपी की मीटिंग बुलाई, तो प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़े हैं, वो वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँच गया, उस मीटिंग उन्होंने देखा कि ये तो सारे एमपी तो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो तो एमपी को गिन भी नहीं रहा, देख भी नहीं रहा एमपी की तरफ, सीधा आदेश पास कर रहा है और ये तो सब लाइन लगे हुए आगे पीछे। तो बोले कि सर ये आपसे बड़े हैं क्या, कि ये तो सबसे बड़े हैं, कि तो मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, आप इनसे सिफारिश कर दीजिए। एमपी ने उनकी प्रधानमंत्री से सिफारिश कर दी। अब प्रधानमंत्री के पास हो गया कि सर आप सबसे बड़े हैं, हाँ मैं ही हूँ यहाँ पे। तो अब प्रधानमंत्री के पास सेवा कर रहे थे, एक दिन प्रधानमंत्री देखे कि कहीं जा रहे हैं, और बड़े सरल तरीके से कि कहाँ आप जा रहे हो, कि मैं काशी जा रहा हूँ, संतों से मिलना है, संतों का आशीर्वाद लेना है, कि मुझे ले चलिए साथ में। वो देखा कि वो तो चरणों में प्रणाम किया है, संत के चरणों में प्रणाम किया, तो बोले कि सर आप सबसे बड़े कि ये सबसे बड़े, कि नहीं नहीं ये तो सब ये तो मेरे से बड़े हैं, मैं इनको प्रणाम इसीलिए कर रहा हूँ कि ये मेरे से बड़े हैं, देखिए ये आपसे बड़े हैं, तो फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिए, वो आपकी सेवा उनकी सेवा में लगा लें मुझे, ये तो ठीक है। उन्होंने उनको सेवा में लगा दिया, उस संत से कहा कि आपकी सेवा करना चाहता है, निस्वार्थ सेवक है, अच्छा सेवक है, आप इसको रख लीजिए। तो संत ने उनकी सेवा में लगा लिया, अब वो संत है वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, है? बोले आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, कि बोले संसार के मालिक तो ये हैं, इनको प्रणाम कर रहा हूँ, कि संसार के मालिक ये हैं, कि आपको वो प्रणाम कर रहे हैं, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं, कि नहीं ये सबको सब इनको प्रणाम करते हैं, ये सबसे बड़े हैं, कि फिर इनकी मुझे इनकी सेवा में लगा दीजिए, इनकी मेरी एप्लीकेशन लगा दीजिए। बोले आपको एप्लीकेशन के लिए प्रोसीजर फॉलो करना है, दीक्षा लो प्रॉपरली करो तब जाके फाइल लगेगी आपकी, है ना। तो इस तरह से वो फाइनली संतुष्ट कहाँ हुआ, भगवान की सेवा में आके वो संतुष्ट हो गया। तो जो भी भगवान की सेवा करेगा वही संतुष्ट हो सकता है। बाकी हमारे जो भजन है भजौरे मन श्री नंदन नंदन, उसमें संसार के लोगों के लिए तो गोविंददास जी बोलते हैं, विफले से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागिरे। संसार में चंचल थोड़े से सुख के लिए हम विफल प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को संतुष्ट करने का जो कृपण है और दुर्जन है। कृपण, कृपण बोलते हैं कंजूस, कंजूस मतलब जिसके पास सुविधा होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठाता। तो इस दिशा में जितने भी भौतिकतावादी लोग हैं सब कंजूस हैं, भले ही वो अरबपति क्यों नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भजन करने के लिए मन शरीर में सुविधा है, उसका लाभ नहीं उठा रहा है, तो कंजूस है। सुविधा है लेकिन लाभ नहीं उठा रहा है ना, तो कंजूस आदमी है वो, और इसका बड़ा नुकसान होगा उसको आगे जाके, है ना। और दुर्जन, दुर्जन इसलिए है कि जो भगवान का भजन नहीं करता उसके लिए भागवत में बताया है कि उसके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं होते, है ना, उसके अंदर अच्छे गुण हो ही नहीं सकते। भगवान के भक्तों में ही सद्गुण पाए जाते हैं, वो जो भक्ति करने लग गया उसमें सद्गुणों का विकास हो जाएगा, समय भले ही लग जाए उसमें सारे सद्गुण देवीय गुण आ जाते हैं, है? लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं उसमें कोई अच्छे गुण नहीं पाए जाते। अब बताओ दुर्जन का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, है, कोई दुष्ट है और कंजूस है, उसकी सेवा करो कितना भी वो संतुष्ट हो सकता है क्या? इसीलिए गोविंदास जी बोलते हैं विफल सेवनो, विफल प्रयास मत करो, कोई फायदा नहीं है। और आपको अनुभव होगा, जो लोग कर किए हैं प्रयास वो इसको रियलाइज भी कर सकते हैं कि कितना भी कर लो कोई संतुष्ट नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि मालिक जो ये जिनकी सेवा करते हैं वो केवल हमारे परिवार के लोग भी जो सब सब इस श्रेणी में आते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हो, आपके पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, जो भगवान के भक्त नहीं है उनको संतुष्ट करना असंभव है, वो संतुष्ट नहीं होते। तो संतुष्ट, और हमारे कृष्ण भगवान तो बहुत दयालु हैं, तो थोड़े वैसे बहुत आसानी संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं कि देवी देवता तो ऐसे शिव जी हैं, आशुतोष कहलाते हैं, लेकिन जल्दी नाराज भी हो जाते हैं जितना जल्दी संतुष्ट होते हैं उतना जल्दी नाराज भी होते हैं, लेकिन हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि कभी नाराज नहीं होते हैं, और नाराज नहीं होते और वो हमेशा दया ही करते हैं। जैसे माता पिता बच्चे के प्रति हमेशा दयालु रहते हैं, माता पिता तो कुछ भी नहीं, भगवान का तो भक्त वत्सल बोलते हैं, जो गाय बछड़े के प्रति जो उसका ममता होता है वो ऐसे ही भगवान अपने भक्त के प्रति वत्सल रहते हैं, और उसमें भगवान कोई अपराधों को लेते नहीं हैं, भगवान बहुत दयालु है। भगवान एक ही चीज में लेते हैं, जब भगवान के दूसरे भक्त को आप परेशान करो तो उसमें माफ नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो भगवान के प्रति जो अपराध है वो उतने सीरियस नहीं लेते भगवान। तो भगवान बहुत दयालु है इसके बारे में, लेकिन ये प्रसंग अलग है। इसमें एक आगे प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं कि यदि कोई सेवक बिना पराजित हुए अपने स्वामी के आदेशों को पूरा नहीं कर सकता तो ऐसे शक्तिहीन स्वामी की सेवा करने से क्या लाभ। तो एक भागवत में आता है, गुरु न स्यात पिता न स्यात, श्लोक आता है ना, जिसमें ऋषभ देव जी बता रहे हैं कि गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना, अपने आश्रित को बचा नहीं सके, रक्षा नहीं कर सके, किससे, संसार के भय से, जन्म मृत्यु के चक्र से, सबसे बड़ा भय तो यही है, हैं? तो फिर उसको बनना ही नहीं चाहिए, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, अधिकारी को डिस्क्वालीफाइड हो जाता है इसके अनुसार। तो इसीलिए यमदूत बोल रहे हैं कि आप अयोग्य हो गए हो, आप हमारी रक्षा नहीं कर सके, हम तो आपकी आज्ञा से गए थे। इसका दूसरा, अगर दूसरी तरह से इसी बात को दूसरी तरह से बोले तो समर्थ व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने पर हार नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए अगर इसको बोले तो समर्थ गुरु के अगर आज्ञा का हम पालन करेंगे तो इस जीवन में हमारी हार नहीं होगी, हम जीतेंगे, भले ही हमारी योग्यता उतनी नहीं है, हम तो उनके भरोसे चल रहे हैं ना। तो समर्थ गुरु, समर्थ व्यक्ति का उदाहरण देख सकते हैं, परशुराम जी जो है जमदाग्नि के आदेश से, जानते थे समर्थ हैं इसलिए उनकी आज्ञा का पालन किए अक्षरस, उनके और भाइयों ने नहीं किया था, उन्होंने आज्ञा दी थी कि मां का वध कर दो, जमदाग्नि ने आदेश दिया था कि मां को मार दो, जो भाइयों ने नहीं मारा उनको मार दिया जमदाग्नि ने, हैं, परशुराम जी को भी यही आदेश दिया, उनको नहीं मारा था, भाइयों को नहीं मारा था, जमदाग्नि ने परशुराम को बोला कि तुम्हारी मार तुम्हारे भाई सबको मार, गला काट दो सबका। तो जानते थे कि मेरे जो है ये पिताजी जो है ये समर्थ हैं, इसलिए उन्होंने बिना हिचक के इमीडिएटली गला काट दिया सबका, भाइयों का और मां का गला काट दिया परशुराम जी ने। और जब गला काट दिया उसके बाद पिताजी बहुत प्रसन्न हुए, पिताजी की आज्ञा का पालन किया, आज्ञा का पालन करते ही प्रसन्न हुए तो वर मांगने को बोले, वर में बोला कि आप वापस इनको जिंदा कर दो, और इनको याद नहीं रहना चाहिए कि मैंने इनको मारा था तो यही हुआ कि उन्होंने अपनी शक्ति थी, समर्थ थे, उनको जिंदा कर दिया और उनको याद भी नहीं रहा कि परशुराम जी ने उनको काटा था। तो समर्थ जो है गुरु, उनकी आज्ञा का पालन करने से अगर हम उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो फिर वो हमको वरदान देते हैं, उनकी प्रसन्नता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि समर्थ गुरु की प्रसन्नता ये आध्यात्मिक जीवन में सफलता का राज है, सफलता की चाबी है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर, यही रहस्य है। जो कर रहे हैं अगर हम गुरु को प्रसन्न कर पाए, समर्थ गुरु हैं और उनको हम प्रसन्न कर पाए, तो देन हमारी सफलता गारंटेड है और हार नहीं होगी, निश्चित है ये, है ना। ऐसे और भी प्रभुपाद जी खुद उदाहरण है। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया तो वो जीते। दूसरे शिष्य थे भक्ति सिद्धांत कृष्ण महाराज के, जिनको भक्ति सिद्धांत महाराज ने खुद भेजा था, लंदन भेजा था, और उन्होंने आके, उनको विश्वास नहीं था। एक शिष्य ने आगे घोषणा कर दिया कि विदेश में प्रचार हो ही नहीं सकता। वो बहुत बड़े विद्वान थे, उनके नाम पे आपके सामने यहाँ कॉलेज बना हुआ है। और महाराज जो है इतने बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे बहुत बड़े, और वो विदेश गए और उन्होंने जो है उन्होंने प्रयास किया, लेकिन एक उनको ऐसा उदाहरण मिला कि वहाँ पे जो वहाँ के जो मुख्य जेटलैंड बोलते थे, क्या बोलते हैं उनकी टर्म मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मैं वो तैयार हो गया उनकी प्रीचिंग से कि मुझे भक्त बनूंगा, मैं ब्राह्मण बनूंगा, मुझे ब्राह्मण बना दो। वो रेडी हो गया। तो ब्राह्मण बनने के लिए मुझे करना क्या होगा? बोले चार नियम पालन करने होंगे। चार नियम जैसे ही बताए बोले इम्पॉसिबल, बोले संभव ही नहीं है। इधर विदेश में तो इसी बात को दोहरा के बोले कि विदेश में प्रचार संभव नहीं, वापस आ गए। लेकिन प्रभुपाद जी का विश्वास, पूर्ण विश्वास था। बहुत परीक्षा हुई प्रभुपाद जी की, छोटी मोटी परीक्षा नहीं हुई थी। इतने साल तक प्रभुपाद जी विदेश जाने के लिए सोचते रहे। 1922 में प्रभुपाद जी को आदेश मिला था, 1965 तक, लेकिन 2400 घंटे प्रभुपाद जी सोचते थे मुझे विदेश जाके प्रचार करना है, और सफलता नहीं मिली, अताशा मिली। प्रभुपाद जी ने पहले सोचा कि विदेश जाना, धन चाहिए, धन कमाता हूं, बिजनेस चालू किया। प्रभुपाद जी कोई पैसे का लोभ नहीं था। एक कंपनी में मैनेजर थे जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यार मैनेजर रहते हुए मुझे इतना पैसा नहीं होगा, मैं अपनी कंपनी डालता हूँ जिससे सफिशियंट पैसा होगा। प्रभुपाद जी ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो लॉस हो गया, है ना, उसमें असफल रहे। फिर अकेले, फिर भी प्रभुपाद जी मतलब ये नहीं छोड़ा कि मैं विदेश नहीं जाना है। अब जाएंगे कैसे, पैसा नहीं है, कोई जानने वाला नहीं। ऐसी स्थिति थी कि बहुत, आप तो सब जानते प्रभुपाद जी को कितना संघर्ष हुआ, यहाँ भारत में थे तभी है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा और मैं कर नहीं पाऊंगा। प्रयास करते रहे करते रहे। फाइनली वो जहाज से गए, पानी के जहाज से, कार्गो शिप था, और उससे गए। और फिर रास्ते में उनको दो अटैक भी आए, तो दो अटैक आए तब निराशा हुई प्रभुपाद जी को, और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मैं तो मेरे गुरु का आदेश पालन नहीं करा, मेरा जीवन बेकार हो गया है ना। तो भगवान खुद दर्शन दे के आश्वासन दिए कि तुम सफल हो गए, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा है। उसके बाद आगे गए अमेरिका में, वैसे नहीं जाते ही लोग उनके पीछे हो लिए। एक साल बहुत खतरनाक स्ट्रगल था प्रभुपाद जी के लिए। पहला स्टूडेंट मिला जिसको प्रचार कर रहे थे, वो सोलहमाला करने लगा था, उनके साथ रहने लगा था, डेली भागवत क्लास में आता था। प्रभुपाद जी इतने उत्साहित थे कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाइयों को लेटर लिखा कि मुझे एक लड़का मिल गया है अमेरिकन, इसको मैं संत बनाऊंगा, अभी इसको भारत लेके आऊंगा, इसको ट्रेनिंग दूंगा बकायदा डीटी वर्शिप की, और इसको सन्यासी बनाऊंगा मैं, ऐसा लेटर लिखा था। इतने उत्साहित थे, और इससे मैं पूरे प्रचार कर फैलाऊंगा मैं इसी से। और इतना चल ही रहा था, एक कुछ महीने बाद एक दिन वो रात में प्रभुपाद जी ग्रंथ लिख रहे थे और चाकू लेके खड़ा हो गया मारने को प्रभुपाद जी को, डेविड नाम था उसका है। एक वृद्ध व्यक्ति आधी रात को कहाँ जाए, जो वो मारने को जवान लड़का है, उसे जान बचा कैसे भागे होंगे। ये हताश होने के लिए ऐसी ऐसी घटनाएं हुई प्रभुपाद जी के साथ कि है ना, कोई भी हताश हो जाए। ये प्रभुपाद जी का अद्भुत विश्वास था अपने गुरु के ऊपर। इतना इतना ऐसी स्थितियां बनने के बाद तो कोई भी, और प्रभुपाद जी के पास टिकट था वापस आने का, जो सुमती मुरारी जी ने दिया था कि जब भी स्वामी जी आपकी इच्छा हो आप वापसी का टिकट ले सकते हो, ऑफिस में आके बनवा सकते हो। प्रभुपाद जी कई बार हताश होते थे और प्रभुपाद जी जाते थे वहां पे, ऐसा नहीं हताश नहीं होते थे, हताश होते थे, लेकिन गुरु पे विश्वास था, यही उनको यही रोक के रखा था। रूपा जी आते थे कार्यालय में, आते थे, पूछते थे कि अगला जहाज कब जा रहा है इंडिया, तो वो बताते थे कि टिकट बना दे कि नहीं नहीं अभी मत बनाओ, मैं बता दूंगा। तब तक फिर दोबारा आते, तब तक वो जहाज जा चुका होता था, चार छः महीने, दो चार महीने में जाते थे जहाज ऐसे। तो ऐसे रूपा जी कई बार आते थे, लेकिन बाप फिर हिम्मत करते थे कि नहीं नहीं और प्रयास करना चाहिए, गुरु जी ने बोला तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, गुरु पे ऐसा दृढ़ विश्वास था। और यही विश्वास था जिसको प्रभुपाद ने बोला कि मेरा नाम में और मेरे गुरु के आज्ञा में विश्वास था। तो समर्थ गुरु पे अगर विश्वास है तो वो आपको भगवत धाम ले के जाएंगे। हम तो रोज गाते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदम जहां रे प्रसाद है भाई एवं तो और आ जाए, लेकिन वो नहीं रहता है। तो यही बात बोल रहे हैं, इनका विश्वास टूट गया था, यमराज जी के ऊपर विश्वास पूर्ण विश्वास था और हमेशा सेवा कर रहे थे, लेकिन अब विश्वास टूट गया था। तो यही कुछ इसमें मैंने प्रयास किया, इसमें छोटा सा तात्पर्य था जिसमें ये भाव गुरु कृपा से, भगवान कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से लगा। और ये जो प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है, ऐसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको भगवान के नाम में और गुरु में विश्वास बढ़ाना चाहिए, यही पोषण का है। हम लोग कई बार पोषण के लिए और चीज़ें ढूंढते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें हैं तो पोषण अपने आप होएगा। है नाम क्या है, जीव दया और नामे रुचि वैष्णव सेवन, ये तीन चीज़ें जो है बताई है शास्त्रों में कि इनमें होगा तो फिर भक्ति ठीक ठाक चलेगी, इनमें डाउन हो गए और कहीं भी जाएंगे इधर उधर तो गड़बड़ होने से लगता है, क्योंकि यही यही शक्तिशाली है। कलयुग में तो नाम ही आधार है और गुरु तो पहले हैं, गुरु कृपा के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते, और गुरु प्रसन्न करने के लिए प्रचार भी करना पड़ेगा, है ना। तो जीव दया, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, कोई प्रश्न है नहीं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जगत गुरुशिला रूपाद की, कौन वृंदावन धाम की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।